आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ। सिडनी में नए साल की पूर्व संध्या की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बोंडाई हमले के बावजूद लोग डर के साए को नहीं वरन उम्मीद और उल्लास को चुनते हुए जश्न मनाने घरों से निकल रहे हैं। राष्ट्रीय व स्थानीय नेता लोगों से सिडनी में बाहर निकलकर जश्न मनाने की अपील भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये बोंडाई हमले के आरोपियों के खिलाफ एकजुटता और दृढ़ संकल्प दिखाने का एक तरीका होगा। इस अपील पर अब तक हजारों लोग सिडनी ओपेरा हाउस के आसपास जमा हो चुके हैं ताकि नए साल की आतिशबाजी का बेहतर नजारा देख सके। सिडनी के लॉर्ड मेयर क्लोअमुआ ने कहा कि ये साल की सबसे बड़ी रात है जब सिडनी एक साथ आकर दुनिया को दिखाता है कि हम एक समुदाय के रूप में खड़े हैं। उनके मुताबिक इस बार का न्यू ईयर ईव जश्न अब तक का सबसे बड़ा होगा। ये सिर्फ आतिशबाजी नहीं बल्कि पहचान का प्रतिबिंब होगा कि एक विविधतापूर्ण समावेशी और रचनात्मक शहर जहां पूरे शहर में एकजुटता की भावना साफ दिखाई देगी। वहीं दूसरी ओर पात्र परिवारों को 5 जनवरी से हर हफ्ते कम से कम 3 दिन की सब्सिडी वाली चाइल्ड केयर सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही फेडरल सरकार अपना एक अहम चुनावी वादा पूरा करने जा रही है। 2026 से लागू होने वाले बदलावों के तहत पात्र अभिभावकों को अपने बच्चों के दंत उपचार के लिए हर 2 साल में अतिरिक्त $26 भी मिलेंगे। वित्त मंत्री केटी गैलेगर का कहना है कि ये बदलाव चाइल्ड केयर को सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि इसका एक अहम पहलू जरूरी वर्कफोर्स तैयार करना है, यानी चाइल्ड केयर कर्मियों को उचित वेतन देना ताकि बच्चों की देखभाल के लिए पर्याप्त शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही सरकार नए चाइल्ड केयर केंद्रों के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश कर रही है और इस उद्देश्य के लिए एक विशेष फंड भी बनाया गया है। वहीं आउटबैक क्वींसलैंड में बाढ़ से पशुधन को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए हवाई सर्वे किए जा रहे हैं। दर्जनों सड़कें अब भी बंद हैं जिससे कई समुदायों का संपर्क टूटा हुआ है। कई दिनों तक हुई भारी बारिश के बाद मौसम साफ होने पर पशुपालकों को हेलीकॉप्टर के जरिए नुकसान का जायजा लेने का मौका मिलेगा। हालांकि मैकिनलेशायर की मेयर जिनेन फिगन का कहना है कि नुकसान की पूरी तस्वीर सामने आने में अभी समय लगेगा। मंगलवार 30 दिसंबर दोपहर सुदूर उत्तरी कस्बे नॉर्मटन में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी डूबी हुई कार में मृत पाए गए थे। क्वींसलैंड के प्रीमियर डेविड क्रिसाफिली ने कहा कि क्वींसलैंड के लोग मजबूत हैं, लेकिन स्थानीय व्यक्ति की मृत्यु का असर कई लोगों पर पड़ेगा। वहीं न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिंस का कहना है कि वे बोंडाई हमले को लेकर फेडरल स्तर पर रॉयल कमीशन गठित करने के लिए प्रधानमंत्री पर दबाव नहीं डालेंगे। हालांकि क्रिस मिंस ने राज्य स्तर पर रॉयल कमीशन गठित करने की प्रतिबद्धता जताई है। वहीं विपक्ष यहूदी संगठनों और पीड़ित परिवारों की ओर से फेडरल स्तर की जांच की मांग तेज हो रही है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी अपने फैसले पर कायम हैं। उनका कहना है कि कानून प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों की एक समीक्षा कराई जाएगी जो रॉयल कमीशन की तुलना में अधिक तेजी से पूरी की जा सकेगी। हालांकि प्रीमियर मिंस का कहना है कि उनका पूरा ध्यान इस समय इस बात पर है कि अभी तुरंत क्या किया जा सकता है। वहीं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में किम्बली क्षेत्र से टकराने के बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन हेली से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मंगलवार को ट्रॉपिकल साइक्लोन हेली डैम्पियर प्रायद्वीप पर श्रेणी 3 के तूफान के रूप में तट से टकराया जिससे व्यापक स्तर पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई। डैम्पियर प्रायद्वीप स्थित केप लावीक के निवासियों ने बताया कि 2 घरों की छतें उड़ गई हैं। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 158 किलोमीटर प्रति घंटे की दर्ज की गई। आपातकालीन सेवाएं नुकसान का आकलन करने और जरूरतमंद समुदायों तक जमीनी टीमों को भेजने के लिए विमानों और हेलीकॉप्टरों की तैनाती कर रही हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। इसराइल का कहना है कि वे जनवरी से गाजा में काम कर रही कई सहायता एजेंसियों की गतिविधियों को रोक देगा। उनका आरोप है कि ये संगठन नए पंजीकरण दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहे हैं। इसराइल के प्रवासी मामलों और यहूदी विरोध से निपटने वाले मंत्रालय का कहना है कि संबंधित संगठनों ने अपने फिलिस्तीनी कर्मचारियों की सूची जमा नहीं की है। मंत्रालय के अनुसार ये प्रक्रिया आतंकवाद से किसी भी संभावित संबंध की जांच के लिए आवश्यक है। वहीं ऑक्सफैम और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे संगठन संगठनों का कहना है कि ये नियम मनमाने हैं और इनके चलते सहायता कार्यों पर रोक से पहले ही गंभीर मानवीय संकट झेल रही आबादी को और नुकसान उठाना पड़ेगा। और अब अंत में खबरें भारत से। भारत में नए साल के जश्न से ठीक पहले देश भर में गिग वर्कर्स की हड़ताल डिलीवरी सेवाओं को प्रभावित कर सकती है। 31 दिसंबर को भारत में जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट और अमेजोन से जुड़े डिलीवरी पार्टनर्स ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। ये साल का सबसे व्यस्त दिन माना जाता है, जब फूड और ग्रोसरी डिलीवरी की मांग सबसे ज्यादा होती है। गिग वर्कर्स का कहना है कि गिरती कमाई, असुरक्षित 10 से 20 मिनट की डिलीवरी का मॉडल, एल्गोरिदम आधारित दंड और सामाजिक सुरक्षा की कमी उन्हें विरोध के लिए मजबूर कर रही है। यूनियनों के मुताबिक लाखों वर्कर्स इसमें शामिल हो सकते हैं, जिससे बड़े शहरों में सेवाएं बाधित होने की आशंका है। गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विसेज वर्कर्स यूनियन ने श्रम मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। वर्कर्स सुरक्षित कामकाजी हालात, न्यूनतम आय की गारंटी और श्रम कानूनों के तहत कानूनी मान्यता की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ 31 दिसंबर 2025 यानी 2025 के आखिरी संक्षिप्त समाचार का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।